वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन पॉडकास्ट के साथ बहजत चलानी। पल पल बदलती दुनिया, कल से आज और तब से अब तक के सफर का अहवाल। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से पॉडकास्ट का एक नया सिलसिला इस सफर में हमारे हमराह रहिएगा। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। कुछ लोगों के लिए इस हकीकत को कबूल करना मुश्किल भी होता है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारे इर्द गिर्द की सूरत हाल इससे बहुत मुख्तलिफ थी जो आज हमारे सामने है। माजी हमारी यादों में जिंदा रहता है, कभी खुशगवार और कभी दिल को बोझिल करने वाला। लेकिन दुनिया तो तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है, या फिर यूं कहिए तब्दील हो रही है, और हमें भी इसके साथ चलना तो है। खा इसका ताल्लुक माशरे की अखलाकी अकदार से हो, रहन सहन, सियासी और सकाफती मायार से हो, जुग्राफियाई सूरत हाल, सोच अंदाजे फिक्र, मेल जोल सफर तक तालीम, हर चीज और हर जगह तब्दीली का यह अमल जारी है। आज एक बार फिर इस तारुफ की जरूरत भला क्यों मुझे पेश आई? इसलिए कि जब आप उस शख्सियत का नाम सुनेंगे तो जान जाएंगे, एक माहिर तालीम, प्रोफेसर एमरेटस, साबिक प्रिंसिपल, नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की साबिक सरबरा और पंजाब में एक साबिक निगरान सूबाई वजीर, दानिश्वर, हिस्ट्री हो या तारीख का तज्जिया, इंसानी हुकूक हो या समाजी मसाइल की बात हो, एक नाम रोशन होकर सामने आता है। और मुझे खुशी है कि आज वॉइस ऑफ अमेरिका के इस प्लेटफॉर्म पर मैं खुश आमदीद कह रही हूं डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़ैरा को। बेहद शुक्रिया के साथ बात का आगाज करते हैं। डॉक्टर साहबा, आपसे बात करने का मौका मिला, बहुत बहुत शुक्रिया।
मेरे सलाम, मेरी दुआ, मेरी मोहब्बत कबूल कीजिए। मैं तो एक आम सा आदमी हूँ, बस हमारी आपकी मुलाकात में कहीं वक्त आड़े आ जाता है, वरना कोई मुश्किल नहीं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया,
मैं हाजिर।
बहुत दफा आपसे बात होगी क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिसपे आप सोचती हैं, लिखती हैं, और हमें वो बताने की जरूरत होती है कि हमारी बात कहीं ना कहीं तो सुनी जाएगी और कुछ ना कुछ उससे फर्क जरूर पड़ेगा। अब मेरा ये बड़ा पक्का यकीन है इस बात के ऊपर। तो आज जब आपसे बात कर रही हूँ तो ऐसे साल में जब पाकिस्तान अपने क्याम के 75 साल पूरे कर रहा है, इस सफर में आज हम एक कौम की हैसियत से कहाँ खड़े हैं?
बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही नाजुक है और बहुत ही टेढ़ा सवाल। पहली बात तो ये कहूँ कि जहाँ हमें खड़ा होना चाहिए था वहाँ हम नहीं खड़े, हम एक कदम आगे गए और दो कदम पीछे गए। देखिए, मैं हालात की तब्दीली से नहीं घबराती, वक्त भी बदलने के लिए होता है और वक्त के साथ हालात भी बदलते हैं, लेकिन अगर रवैये बदलना शुरू हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल होती है, और वही रवैये फिर आप जो वक्त की तब्दीली है वो आपको कबूल नहीं करने देते। हमारी समझ में ये क्यों नहीं आता, और ये बात मैं कह जाती हूँ मुसलसल कि वक्त गुजरता जरूर है मगर वापस नहीं आता, और जो गुजरा हुआ वक्त है वो बेकार भी नहीं होता। मेरे ख्याल में, मैं एक मामूली तालिब इल्म हूँ तारीख की और अदब की, उन्होंने मुझे ये बताया कि तारीख और अदब दोनों इंसानी तजुर्बों की बड़ी बहुत काबिल यकीन दस्तावेज। तो देखिए, हम अक्सर अपने माशरों में ये करते हैं कि सबसे पहले तारीख को मस्क करना शुरू करते हैं। अफसाना निगार या शायर तो उनके हाथ में इतनी आसानी से आता नहीं मस्क करने, क्योंकि वो अपनी बात तो कहीं इशारे में, किनारे में, इस्तारे में करता है, और जो उसे कहना होता है कह देता है, और जिन्हें समझना होता है वो समझ लेते हैं। खास तौर पर जो दिन इस वक्त पाकिस्तान में गुजर रहे हैं वो कुछ तश्वीश के हैं, और अगर मैं कहूँ कि जो दिन इस वक्त गुजर रहे हैं पूरी दुनिया में वो तश्वीश के हैं, वो हमारा पड़ोस हो या दुनिया की एक काफी अच्छी कवि ताकत हो या और दूसरे ममालिक हो, मुझे ये बात परेशान रखती है कि क्या हो गया हम सबको, हम इतने वहशत ज्यादा क्यों हो गए? खौफ तो हमें उस वक्त होना चाहिए था जब हमने चीजें दरियाफ्त नहीं की या जब चीजों का इल्म हमें नहीं हुआ, और आज हम ये दावा करते हैं कि हमने चीजें भी दरियाफ्त कर ली, हमें इल्म भी हो गया, लेकिन हमारी परागंदा ख्याली और हमारी तबीयत की वहशत बढ़ती जाती है। मुझसे एक लफ्ज में पूछेंगी तो मैं ये कहूंगी कि हम मिल के जीना भूल गए।
बहुत
सवाल का शुक्रिया।
दुनिया के किसी भी माशरे की तरह जैसे आप बात कर रही हैं, पाकिस्तानी माशरे को भी मुतद्दिद समाजी मसाइल का सामना है। ان مسائل پر قابو پانے کے لیے سوچ اور انداز فکر میں تبدیلی درکار ہوتی ہے. کہاں سے شروع کرنا چاہیں گے اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے؟ ہم بہت عرصے سے بات کرتے آ رہے ہیں مائنڈ سیٹ کی، جو مختلف حوالوں سے ہمارے معاشرے میں مختلف مسائل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کس طرح سے تبدیل کریں گی؟ آپ تو دانشور ہیں، آپ تو ماہر تعلیم ہیں.
میں تو زندگی صرف مجھے عزیز بہت ہے اس زندگی، اور مجھے اچھی بھی بہت لگتی ہے. میں عمر عزیز جب کہ میں غروب کے وقت میں کھڑی ہوں، بالکل مجھے بہت اچھی لگتی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زندگی آپ کے لیے امکان پیدا کرتی ہے، اور امکان سے موقع سامنے آتے ہیں. ہم امکان ہی تسلیم نہیں کرتے. اور جو بات آپ نے کہی ہے کہ ہم کیسے بدلیں گے، وہ اس لیے مشکل ہو گیا ہے کہ میرا یہ یقین ہے کہ زندگی بسر کرنے والوں کو املا لکھواتی ہے. ہم سب املا خود لکھوانا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ایک ٹھہراؤ کی ضرورت ہوتی ہے، رواداری کی ضرورت ہوتی ہے، برداشت کی ضرورت ہوتی ہے. رویے صرف بدل سکتے ہیں جب ہم دوسروں کو یہ سمجھیں کہ زندگی قابل احترام ہے، اور ہر زندگی گزارنے والا قابل احترام ہے. اور ہمارے لیے یہ لازمی ہو جائے کہ ہم ہر کسی کی بات سنیں، اور خاص طور پر وہ بات سنیں جو ہماری جیسی نہ ہو، جو ہم سے اختلاف کر رہا ہو. لیکن ہم نے اختلاف کے معنی بھی تکبر کر لیے ہیں. ہم اس قدر انا پرست لوگ ہوتے جا رہے ہیں. جہاں بھی آپ مجھے معاف کر دیجیے گا بیجت، میں بہت عمومی بات کر رہی ہوں. پتہ نہیں ہمارے احساس کی نرمی، ہمارے دلوں کی وسعت، ہمارے ظرف کا پھیلاؤ کیوں کم ہوتا جا رہا ہے. اب بہت سے جو میرے اکنامکس کے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خریدار کی قوت بڑھ رہی ہے. تو جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ آپ زندگی میں ہر چیز خرید سکتے ہیں، تو پھر قدروں کی، رویوں کی، کچھ حدوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. آپ کو اقبال عظیم صاحب کا ایک شعر سنا سکتی ہوں؟
بالکل جناب ارشاد.
مجھے آج کل بہت اچھا لگ رہا ہے.
جی ضرور.
بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں.
بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں.
چلن بدلیں، فقط ساقی بدل جانے سے میں خانہ نہ بدلے.
واہ بہت خوب، سارا اس کا جواب آ گیا.
یہ مجھے یہ شعر جواب دیتا ہے میری بات کو.
جی بالکل.
اور دوسری بات، وہ میرا ظالم محبوب شاعر جس کا نام غالب ہے، وہ دیکھیے اس کو کمال یہ ہے کہ بہت سے لوگ میری طرح کے جو سطح تک رہ جاتے ہیں، اس نے ایک تہذیب کے مٹنے کا اپنی شاعری میں مرثیہ لکھا ہے، نوحہ. ہم اسے یہ کہہ کے، وہ محبوب سے یہ کہتا ہے، کہتا ہوگا محبوب سے بھی، مگر جو وہ ہم سے کہہ رہا ہے وہ بھی ہم سمجھ لیں. اور آپ اجازت دیں تو اس کا بھی ایک شعر آپ کو سنا دیں.
بالکل، کیوں نہیں.
اب بادہ شبانہ کی سرمستیاں کہاں،
واہ
اٹھیے بسب کی لذت خواب سحر گئی.
واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب.
ہے نا ایک تہذیب کا نوحہ.
بہت خوبصورت بات ہے، بالکل آپ صحیح کہتی ہیں. لیکن یہ کیوں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، کہ جب ہم کیوں نہیں سمجھنا چاہتے جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے؟ ہمیں سب کچھ نظر بھی آ رہا ہے، اور اس میں یہ وہ تبدیلیاں جو ہیں، جو ساری چیزیں ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہے، شکست ہے، ریخت ہے، وہ سب کچھ ہم سے ہمارا حصہ بھی مانگتی ہیں. پھر ہم کیوں آنکھ بند کر کے آگے بڑھتے ہیں؟
وہ اس لیے ہم آنکھ بند کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ ہم نے اپنے نفس کی آنکھیں کھول دی ہیں، اور ہم نے اپنے دل کی آنکھ بند کر لی. جب مجھے ہر چیز صرف اپنے لیے چاہیے، تو میں کیسے سوچوں گی کہ کوئی اور بھی ہے؟ تکبر میں یہی گڑبڑ.
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ برسوں پہلے جب میں بھی کبھی اپنے کل پر نظر ڈالوں بیٹھ کے، تو ایک سادگی تھی، محبت تھی، کشادگی کا احساس ہوتا تھا. لیکن آج جب معاشرے کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم نے تو الگ الگ خانوں میں خود کو بند کیا ہوا ہے. انسانی رشتے ہیں، لگتا ہے ان میں دوریاں ہیں، یہی وجہ ہے کہ زندگی الجھ گئی ہے. کہاں غلطی ہوئی کہ ہم انسانی رشتوں میں بے حسی محسوس کرنے لگے؟
غلطی اس میں ہوئی کہ معاش تو مل گئی، علم نہیں ملا، پیسے تو بہت آ گئے، احساس لٹا دیا ہم نے. یہ ہماری غلطی تھی. میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا آپ سے کہ اگر ہم ہر چیز خرید سکتے ہیں تو ہم بہت طاقتور ہیں. اور مجھے اس کا افسوس یہ ہے، میری صاحب گوئی معاف کر دیجیے گا، کہ پہلے ہم چیزیں خریدتے، اب ہم لوگوں کی آرزوئیں خریدتے ہیں.
ارے واہ.
پہلے ہم سامان خریدتے، اب ہم لوگوں کی بے بسی اور مجبوری خریدتے. آپ نے جنس بھی بدل دی، خریدار بھی بدل دیا، تو بتائیے وہ بات کہاں سے آئے گی؟ وہ سادگی کیسے آئے گی؟ وہ شرکت. میں یہ کہتے ہوئے مجھے انتہائی دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ ایک لفظ اتنا خوبصورت ہے جو ہماری زندگیوں میں نظر آتا تھا، برداشت کہتے ہیں اس کو، رواداری بھی کہہ لیتے ہیں، ملنساری بھی کہہ لیتے ہیں، شریک ہونا بھی کہہ لیتے ہیں. اب ہم اس طرح شریک نہیں ہوتے. اب ہم ہر بات اس لیے کرتے ہیں क्या इसमें हम दूसरों से मुमताज नजर आएंगे? मैं लोगों से अक्सर कहती हूँ, मेरी दीवानगी का ये आलम है कि अगर इस मुकाबले में जिंदगी गुजार दोगे तो जिंदगी का लुत्फ कब उठाओ? जो मयस्सर है उसका तो लुत्फ लेना शुरू करो और फिर देखो। और ये मेरा यकीन है, जिंदगी से मोहब्बत करना मुश्किल जरूर है, मगर आप एक दफा उससे मोहब्बत कर लें तो उससे अच्छा महबूब और कोई नहीं।
लेकिन मैडम, जब इस इंफॉर्मेशन एज में, ये सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया कहते हैं जी ग्लोबल विलेज हो गई है, पल पल मिलने वाली मालूमात है, लेकिन फिर भी दानिश्वरों की तो जरूरत है। क्या आप समझती हैं कि आज के उलमा और दानिश्वर जो हैं, वो इस्लाह और रहनुमाई का फर्ज बेहतर तौर पर अदा कर रहे हैं, या उनसे भी कहीं कोई कोताही हो रही है कि संभला ही नहीं गया कुछ?
मैं आपसे इस बात को दो जुमलों में कह दूंगी। अब हमारे पूरी दुनिया के माशरे में दानिश्वर कम है, मसलहत परस्त बहुत, और जो दानिश्वर है वो अभी भी उसी तरह अपने एहसास की शमा जलाया जाता है और घुले जाता है। जो हमारे यहाँ मजहबी रहनुमा हैं, उन्होंने सियासत से मौनका कर लिया, गले मिल के खड़े, और पता नहीं सियासत के क्या साथ मुश्किल है कि उसको कोई अच्छी चीज नजर नहीं आती। मैं एक बात और भी कहती हूँ, और जो बहजत आपके सामने दोहराऊंगी
जी,
कि अगर हमसे ये वादा किया ना कि हमारी जिंदगी एक दायरे की शक्ल में बढ़ती है, वहीं जाके रुक जाएगी जहां से शुरू हुई थी। एक बिग बैंग हुआ था, एक सूर का इंतजार और है,
कब फूकेगा।
हाँ, हम वहीं पहुंच रहे हैं जहां से चले थे। उतनी वहशत, उतनी लाइलमी, उतनी बेहसी पहले इसलिए थी कि हम जानते नहीं थे, पहचान नहीं थी, हमें देर लगी अपने आप को दरियाफ्त करने। अब जब हमने दरियाफ्त कर लिया खुद, तो हमारे लिए किसी चीज के माने नहीं रहे, और हम सब इस जोन में कि पदरम सुल्तान बोल।
और कभी तो लगता है खुद से अलग होके खड़े हो जाते हैं।
बिल्कुल, खुद से अलग होके खड़े हों, अगर अपनी जात से उठ जाएं तो मुझसे ज्यादा खुश आदमी आपको इसमें कोई।
पाकिस्तान पुरानी तहजीबों की गुजरगाह है मैडम, सूफियों की धरती है, इसहार है, इंकसारी है, जो रवायतें।
तो मुझे इतना अफसोस है कि मैं उस शहर में रहती हूँ जहाँ अली हजवेरी आराम करते हैं
जी।
उनके चाहने वाले लाहौर का दूसरा नाम दाता की नगरी रखते हैं। आपको उनका छोटा सा वाक्या सुनाना चाहूंगी अगर आपके पास वक्त
जी। बिल्कुल बिल्कुल।
जब वो नए नए लाहौर में आए तो उन्होंने जिस जगह में, आप अगर कभी लाहौर आई हैं।
जी मैं लाहौर से ही हूँ।
बिल्कुल। तो वो जिस जगह वो आराम करते हैं, वो जगह उस शहर से बिल्कुल बाहर थी, शहर बहुत पीछे था दीवारों के और दरवाजों के अंदर।
अब तो बीचों बीच आ गया।
अब बीचों बीच है। तो जो शहर के लोग थे उससे, जो ज्यादातर आबादी हिंदू आबादी, वो एक दिन उनके पास बहुत झिझकते हुए कुछ लोग आए और उनसे कहने लगे कि हमें आपसे हमारा तारुफ नहीं है, मगर हमें आपका बर्ताव, रहन सहन, चाल ढाल सब बहुत अच्छी लगती है। आप किसी से कुछ नहीं कहते, जब आपकी इबादत का वक्त होता है इबादत कर लेते हैं, वरना आप बैठते हैं, कोई आपके पास आ जाता है तो उससे मोहब्बत से मिलते हैं। हमारा बहुत जी चाहता है कि हम आपके पास आए और मोहब्बत से आपके पास थोड़ा वक्त गुजारे। उन्होंने कहा तो हिचकिचाहट किस बात की? जवाब मिला कि हमारा धर्म और है और आपका धर्म और। आप दाता साहब सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का जवाब सुनिए कि जिसके तुम हो उसी का मैं हूँ, तो आपस में झिझक कैसी। और एक बात और मैं लोगों को सिर्फ याद दिलाती कि दाता साहब को पंजाबी नहीं आती थी, लाहौरियों को फारसी आती थी। ये जो जबानें हैं ये भी बड़ा कमाल करती। हमने न जाने किस चीज का किस चीज से सौदा किया है। एक तो इख्तदार, उसमें रहना हमारे ख्याल में सबसे बड़ी शान होनी चाहिए। अगर आपके जहन में तसव्वुर है कि आपके जिम्मे एक जिम्मेदारी सौंपी गई और उसका एक दौरानिया है, एक मुद्दत है, लेकिन वो मुद्दत खत्म होती है तो दुश्नाम तराजी का एक सिलसिला शुरू हो जाता। हम दुनिया के नए नशों से आजकल बहुत खबरदार भी होते जा रहे हैं और घबराहट भी होती है, मगर ये जो इख्तदार का नशा है ये मुझे लगता है सबसे जालिम। वो ये समझते ही नहीं कि तमाम उम्र हमेशा वही इख्तदार में नहीं रह सकते। जिंदगी एक बहुत अच्छा खेल है, वो सबको बरसर इख्तियार आने का मौका देती है जो चाहते हैं। और जब मैंने लफ्ज इख्तियार कहा तो मुझे अपने मौलाना रूम याद आ गए
जी।
उन्होंने कहा था कि असल इख्तियार उसके पास है जो तर्क करना जानता है।
ये खूबसूरत बात है, क्या तसव्वुफ है, गहरी गहरी बात है बड़ी।
क्या बात है कि आपका तो इख्तियार यह है कि आप कुछ छोड़ सकते हैं या नहीं।
जैसे बुद्धिज्म में भी आपको ये मिलता है कि जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे।
आप ये देखिए कि हमारे जो आज के सरबराह हैं, किसी तरह लीडर हैं, कुछ हैं, उन्हें तर्क करना नहीं। तर्क नहीं करेंगे तो आपने कितनी अच्छी बात अपने तारुफ में कही थी कि जो हम एक तब्दीली चाहते हैं, और मैं हमेशा लोगों से एक बात कहती हूँ, अपनी मिसाल देते कि जिस तरह की जिंदगी मैं बचपन में गुजारना चाहती थी वो उसी वक्त अच्छी लगती थी, मैं अब वो जिंदगी नहीं गुजारना चाहूंगी, आराम से गुजारना चाहूंगी, इज्जत से गुजारना चाहूंगी, एहतराम से गुजारना चाहूंगी, मगर मैं बचपन की जिंदगी नहीं गुजारना चाहूंगी।
हमारी समझ में अभी जमाना आगे बढ़ गया,
हमारी समझ में बात अभी नहीं आई, हम बढ़ गए आगे, तो कुछ तो हमारे अंदर पुख्तगी आई होती, कुछ तो हम गैर महसूस तरीके से अपने शऊर की सतह को बढ़ाते जाते। और मैं तो बहुत आपको आज मैं बहुत अच्छे किस्से सुना रही हूँ,
बहुत खूबसूरत बात हो रही है जी। मेरा तो वो जिसे कहना चाहिए ना कि जो दूसरी बातें हैं जो आपसे करने वाली हैं, आपको सुनती हूँ इसीलिए बीच में कहती भी नहीं कि एक रवानी के साथ आप बात कर रही हैं। और वाकई बात वही बात है कि ये जो हमारा अलमिया है आज का, जो मुझे सबसे बड़ा अलमिया लगता है वो यही है कि जो एक अकदार की, अब मुझे कहना नहीं चाहिए, पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए,
कह दीजिए, आप कहेंगी तो मैं कह दूं,
जो एक अकदार नजर आती थी एक जमाने में, वही जो हम बार बार बात कर रहे हैं, वजादारी की, शायस्तगी की, एक दूसरे के एहतराम की, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की, वो अब बहुत कहीं दूर चली गई है, बस कुछ समझ नहीं उसकी लगती, हम शायद समझना नहीं चाहते या क्या है। आप तो का ताल्लुक तालीमी शोबे से रहा है, बुनियादी तौर पर जिंदगी के मुतअद्दिद शोबों में भी आपका बड़ा अहम किरदार है। आपसे अगर मैं पूछूं कि आज के पाकिस्तान में वो कौन से दो बड़े और बुनियादी मसले हैं जिनको हल करके आज भी हम एक बेहतर समत का तायुन कर सकते हैं, वो हमने बातों में बहुत सारी चीजें की, लेकिन वाज़े तौर पर अगर आप कहना चाहें तो
मुख्तसरन आपके इस बात का, तो दो चीजें आप चाहते
जी।
एक तो जहां कहीं हमारी जिंदगी में बेहतरी की सूरत आती है उससे ज्यादा हमारे अंदर तकब्बुर बढ़ जाता। मुझे तो ये सिखाया गया था कि जिस टहनी पे फल लगता है वो नीचे झुकती है, मुझे ये नजर आता है कि अब जिस टहनी पे फल लगता है वो ज्यादा अकड़ती है। और हम भूल गए शरीक करना, शामिल होना। शामिल होने के लिए आप दिन के और रात के 24 घंटे एक साथ नहीं गुजारते, शामिल होने के लिए आपका एहसास, आपके रवैये, आपकी तरजीहात, आपकी पसंद नापसंद एक दूसरे के करीब होती। और अगर आप कहीं ये कहने लगी है कि जानबूझकर एक लाशौरी तौर पर एक तबकाती माशरा वजूद में आ रहा है पाकिस्तान में, आ चुका है बल्कि, तो सोच लीजिएगा कि आपके साथ क्या सलूक हो। दो चीजों में से एक चीज को मैं समझती हूँ, अदम बर्दाश्त। माशरों में तकब्बुर जब पैदा होता है लोगों के दरमियान फासले बढ़ता जाते। कैसी लुत्फ की बात है कि बर्दाश्त जो गुर आपके हाथ में जिंदा रहने को देती है वो दूसरों की इज्जत करने, मोहब्बत करने, कदर जाने, और जो तकब्बुर आपको देता है वो मजम्मत करने, इंतकाम लेने और जलील करने की बात है। माफ कर दीजिएगा मेरे ये लफ्ज, सारा रवैया ही जिंदगी का बदल गया। अब हम एक दूसरे से वो सवाल पूछते हैं जो मेरे ख्याल में हमसे सिर्फ खुदा पूछ सकता है।
बिल्कुल सही कह रही हैं।
खुदा होना अच्छा, वो सवाल मेरे और मेरे खुदा के हैं, और मेरे खुदा से ज्यादा मेहरबान तो कोई है ही नहीं। उसका तसव्वुर इस माशरे में ये दे दिया है कि वो कुछ लोगों से तो बहुत खुश है और बाकी हम सब के लिए कोड़ा पकड़ के बैठे। मेरे खुदा का तसव्वुर तो मेरे अंदर एक दरगुजर, रहम, माफी और शफकत का दरिया है। अगर ऐसा ना होता तो हम यहाँ तक नहीं पहुंच सकते थे, दुनिया में 21वीं सदी नहीं आ सकती थी। हम आज बुरे नहीं हुए, हम बहुत दफा बहुत बुरे हुए, मगर हमने संभाला ले लिया, संभाला लिया कि हमने इल्म को दौलत जाना, अब हमने दौलत की तारीफ बदल दी है। कितने हिंसे के आगे कितने सिफर आपकी तनख्वाह में लगते हैं या आपकी आमदनी में लगते हैं, और आप कितनी जल्दी अपनी जिंदगी के साजो सामान को बदल लेते हैं। लोग ये नहीं सोचते कि जब आप साजो सामान बदल रहे होते हैं तो आपके अंदर बेहिसी की एक तह चढ़ती जाती। मुझे माफ कर दीजिएगा ये कहने,
इन्हीं चीजों के ऊपर बात करनी है क्योंकि वाकई आपका इन चीजों के बारे में मुशाहदा है, रोज हम देखते हैं, सुनते हैं, आप लिखती हैं, आप बात करती हैं।
बहुत शुक्रिया आपका। जब हम बेहिस होते चले जाएंगे तो हम तो ये समझेंगे ना कि दुनिया मेरे लिए बनी, मैं दुनिया के लिए नहीं, तसव्वुर ही उलट दिया। जिंदगी के मानी उस वक्त पैदा होते हैं बेहजत मेरे ख्याल में जब हम एक दूसरे को अपने जैसा जानते,
جی وہ بڑی پرانی بات ہے نا کہ جب ہم دوسروں سے ہمیں وہی سلوک کرنا چاہیے جو ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ ہم سے کریں,
کہ ہم سے ہو جی. مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے تو سارا دن لوگ پیروں کو ہاتھ لگائیں اور ہم نخوت سے ہوں کہہ کے آگے بڑھ جائیں تو کیا ہوگا؟ جس کو آپ نے کمتر جانا ہے اس نے آپ کو برتر نہیں جانا, وہ آپ سے خوف زدہ ہے, اس کی بھی ایک عزت نفس ہے اور وہ اس کی خاطر خاموش ہوتا ہے. پاکستان کا معاشرہ اس وقت ایک خوف زدہ معاشرہ ہے. خوف پیسے کی کمی کا نہیں ہے جو کہ بہت ہے اس وقت, خوف اس کمی اور بھوک کا بھی نہیں ہے جو شاید آنے کو ہے. خوف اس بات کا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو کیوں اس طرح ذلیل کر دیتا, سمجھتا کیوں نہیں. ڈھونڈنے کی چیز یہ ہے کہ ہم یہ ڈھونڈیں کہ ہمارے درمیان میں مشترک کیا ہے. ہم ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں اختلاف کیا ہے. تو پاکستان کی اس خطے, ایک بات ختم کر رہا ہوں, خطے کی تہذیب اس قدر رئیس تہذیب ہے, اس کی بنیاد تنوع پر ہے. مادری زبان میں اس کو ڈائیورسٹی کہتے ہیں. زندگی کے معنی بدل جاتے ہیں جس وقت آپ اس تنوع کو قبول کرنے لگتے ہیں. اور پھر آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی صرف اتنی نہیں تھی جو مجھے اپنے عکس میں نظر آ رہی, یہ تو ایک ایسا پھیلاؤ ہے سمندر سے بھی بڑا. تو پھر انسان کا احساس جاگتا ہے, احساس جاگتا ہے تو شعور بھی کروٹ لینے لگتا ہے, اور جب شعور کروٹ لیتا ہے تو پھر ہم علم کی تلاش میں ہوتے ہیں. یہاں ایک چھوٹا سا جملہ یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کل کے معاشروں میں مشکل یہ ہوئی ہے کہ ہم تعلیم کو منزل سمجھتے ہیں. میں ایک معمولی کم علم اپنے آپ کو خوش کہنے کو کہہ رہی ہوں بلکہ بے علم آدمی, میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ تعلیم سفر ہے اور علم منزل.
ایک میرا سوال تھا جو آخری سوال تھا, لیکن مجھے اندازہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ بہت اچھا مجھ سے مجھے بتائیں گی اور ہمارے سننے والوں کو بتائیں گی. اگر یہ پوچھوں میں آپ سے کہ گئے اور گزرے کل میں کوئی ایسی یاد جو آج بھی آپ کے دل کے قریب ہے تو کیا بتائیں گی؟
میں سب سے پہلے جو چیز آپ کو بتاؤں گی, دو باتیں بتاؤں
جی.
ایک تو ہماری زندگیوں میں تربیت پر بہت زور تھا. تعلیم تو دیر میں آتی تھی نا, 5-6 برس کے ہو جائیں
جی,
مگر ان 6 برسوں میں والدین آنکھ بند کر کے یا معاشرہ بند کر کے یا استاد آنکھ بند کر کے نہیں بیٹھتا تھا. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت کرنا صرف والدین کا کام نہیں ہے, استادوں کا صرف کام نہیں ہے, پورا معاشرہ تربیت کرتا, جس کی بات آپ نے رویوں سے شروع کی تھی. ایک چھوٹی سی بات زندگی کی آپ کے سامنے دہراؤں گی, اور جب کبھی بھی وہ بات یاد آتی ہے تو میرا دل کھل اٹھتا. آپ کو حیرت ہوگی, آپ اس فاصلے سے واقف ہیں. میں لاہور کالج کی طالب علم تھی, اور جب میں نے بی آنرس کیا اور گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا تو ہم, چونکہ اس وقت گورنمنٹ کالج کا ہاسٹل نہیں تھا تو ہم رہنے کی اجازت, دیکھیے اس وقت حکومتوں میں بھی کچھ تھوڑی سی برداشت و ملن ساری تھی, انہیں ہمیں لاہور کالج کے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت. میں اور میری دوست اپنے ایم اے کی تعلیم کے دوران بہجت کسی ایک دن سواری پر گورنمنٹ کالج نہیں گئے. لاہور کالج سے لارنس گارڈن کے پیچھے ہے اور یہ ضلع کچہری کے پاس
جی, ہم
پیدل جاتے تھے. رستے میں جو جان کی باتیں کرتے تھے, سنجیدہ سے سنجیدہ, کوئی کتاب پڑھی تو اس پر, کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس پر, ایک اور واپسی پر ہمیشہ لارنس گارڈن میں سے ہو کے آتے. وہ ٹھنڈی ہوا, پھولوں کی خوشبو, سبزے کی بہار جو اب کہیں رہی نہیں اس گارڈن میں. میں اس وقت شاید زیادہ ہنستی تھی, میں ہنستی ابھی بھی بہت ہوں, مجھے بات اپنی بہت اچھی لگتی ہے کہ میں ہنس سکتی ہوں دل کھول. تو وہاں کچھ لوگ, اب میں ان کو بزرگ کہہ رہی ہوں, اور اس وقت یہ دستور تھا کہ لاہور میں کسی جگہ پہ لوگ اخبار لے کے یا کتاب لے کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے, بات ہوتی تھی. تو دیکھیے تربیت ہو رہی ہے نا معاشرے کی.
That's right. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں.
تو ہم وہاں سے دونوں خدا جانے کس بات پہ کھیکی کھیکی کرتے ہنستے چلے آ رہے. جب ہم ان کے سامنے سے گزر گئے, اور اس وقت کا دستور یہ تھا کہ آپ اجنبی کو بھی جب اس کے پاس سے گزرتے تھے تو سلام کر کے گزر. ان میں سے ایک بزرگ نے پنجابی زبان میں کہا, ترجمہ کر دوں گی اگر ضرورت ہوگی, کنیاں چنگیاں لگ دیا نے نا بیبیاں تیاں ہسدیاں چیڑ دیا. آج ہے کہ شرم نہیں, حیا نہیں, بال کھلے ہیں, باہر کیوں ہیں, سڑک پہ ہنس رہی ہیں, آواز ماں محرم سن رہا ہے, لاحول والا میرا ہی معاشرہ میرا محرم نہیں ہے تو میں کہاں جاؤں. مجھے وہ آواز بھی میرے کانوں میں ابھی تک گونجتی ہے, میں نہیں بھولوں گی کبھی. یہ دراصل معاشرہ آپ کو تربیت کر رہا تھا.
ظاہر ہے کہ کوئی رشتہ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ایکسیپٹینس ہے, اپنے بچوں کی طرح کی ایکسیپٹینس ہے دوسرے کو بچوں کے لیے.
ٹھیک, کوئی بات نہیں. اور क्या मोहब्बत से कहा, ये कितनियां चंगियां लग दी है ना बीबियां तियां, और जरा सोचिए किस अच्छी तरह इज्जत से नाम ले रहे हैं,
वही ना कि अपने बच्चों की तरह, अपने बच्चों की तरह।
अब हम किसी को हंसता खेलता नहीं देख सकते। मजहब से ज्यादा कोई चीज ऐसी नहीं है मेरे ख्याल में जो बेखौफ कर सके, हम उसे खौफ ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज के मानी उलट कर दिए। देखिए जब आप एक वतन में रहने वाले को गैर समझने लगेंगे तो वो क्या करेगा। सबसे बड़ी हिजरत ये है कि आप अपने लोगों के दरमियान अजनबी।
बहुत खूबसूरत, मैंने बीच में बिल्कुल आपको नहीं टोका, कई सवाल मेरी जुबान पे आते रहे,
ज्यादा ले रही
कि मेरे जहन में कई सवाल आते थे लेकिन उन सवालों का जवाब अगले जुमले में आ जाता था। कहा हम लोग जो बैरून मुल्क रहते हैं अपने वतन को छोड़कर दूर चले जाते हैं और पीछे पलट के देखते हैं अपनी उन पुरानी यादों को, अपनी उसी वजादारी को, शाइस्तगी को और उन सारी चीजों को, और जब यहां बैठकर हमें एहसास होता है, खबरें सुनते हैं, देखते हैं कि अब सूरत हाल वो नहीं रही जो कभी थी, तो उस वक्त बंदा और भी कट जाता है। फिर पता लगता है जैसे आप कह रही हैं कि अपने वतन में आप अजनबी अगर हो जाएं, तो अब आप सोचें तो हम तो दो दो मुल्कों में अजनबी हो गए फिर।
लेकिन एक बहजत जब इस जगह को छोड़ के हम कहीं और रहने लगते हैं, जैसे आप रहती तो आप वतन को छोड़ती हैं, वतन आपको नहीं छोड़ता, वो आपके अंदर है। मैं तो वतन में हूँ और बेवतन लग, ये एक बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है। मसला यह है कि अब हमारे माशरे हसास, जहीन और बाशऊर जिंदगी की कोई कदर कीमत नहीं करते। उसकी बुनियाद आपने कहीं थोड़ी देर पहले बहुत अच्छी बात कही थी कि अकदार नहीं रही, उसका हमने सौदा मकदार से कर लिया।
खूब, बहुत खूब।
हम मकदार बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह बढ़ा रहे हैं। आप जब भी आती होंगी लाहौर, आप देखती होंगी कि इस शहर को क्या हो गया।
नहीं, रस्ते मुझे याद समझ नहीं लगते। मेरा घर मॉडल टाउन में था, उसमें अब उन्होंने दरवाजे ही दरवाजे बना दिए, रुकावटें खड़ी कर दी
और पेड़ काट दिए।
बिल्कुल,
मैं पिछले साल से रो रही हूँ कि मुल्तान में 70,000 पेड़ आमों की काट दी।
मुझे याद है जब हम वहाँ पढ़ते थे तो डॉक्टर साहब बाकायदा ये होता था कि जब मॉडल टाउन के अंदर बस आती थी या आप दाखिल होते थे तो टेम्परेचर कम हो जाता था, कुछ दर्जे कम हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे ग्रीनरी थी, बहुत दरख्त थे।
एक पूरा मैं समझती हूँ कि वो बस्तियाँ इस एहसास के साथ बनाई गई है कि नामो नमूद के लिए नहीं है, एक दूसरे के करीब रहने के लिए हैं। तो एक ऐसा माहौल हो कि तबीयतें पुरसकून रहें, दिल खुश रहें। ऐसा नहीं था कि जिंदगी में मुश्किल नहीं थी, मसले नहीं थे, ज्यादा मसले थे, ज्यादा मुश्किल थी, मगर वो जो एक साथ का एहसास था कि जो मुझ पे गुजर रही है वो हर किसी पे गुजर रही है, चलो मिल के कोशिश करते हैं। अब हमारे पास मिल के करने को कुछ नहीं रहा,
क्या करना चाहिए?
ऐसे तब यह है उसमें खुदा के लिए तकब्बुर छोड़ दें, नखवत छोड़ दें, ये बात छोड़ दें कि मीर कह गए थे ये मिसरा वो उन्हीं को जेब देता है कि मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। नहीं, हमारी बात मुस्तनद उस वक्त होगी जब मेरी आवाज तन्हा नहीं होगी, मैं अकल कुल नहीं हूं, मुझे उन आवाजों का तर्जुमान बनना है जो शायद खुद बोलने से झिझक रहे हैं पर सोचते, समझते, महसूस करते एक तरह से। हमने क्यों उन्हें दरमियान से निकाल दिया और हमें क्या चीज इस कदर बेखबर किए हुए है? मैं बहुत अक्सर इस बात को सोचती हूँ। तो पाकिस्तान में और पाकिस्तान जैसे दूसरे माशरों में तीन शख्स बहुत अहम है, मैं, मुझको और मेरे लिए।
बिल्कुल, आपने सारी चीजें सामने ला के रख दी। तो बस मतलब यही है कि ठीक कैसे होने की सूरत है जो मैं बात करी थी कि क्या करें, तो बस यही करें कि इस मैं को, मेरे को और को अगर निकाल सकें तो अपने अंदर से।
हमने अभी तक हम होके जीना नहीं सीखा, हम अभी तक मैं मुब्तला, इसलिए हुजूम बढ़ता जाता है, तादाद बढ़ती जाती है, एहसास घटता जाता है, कदर कीमत घटती जाती है। किसी वक्त जमाने में जिंदगी के मानी थे आशनाई, अब जिंदगी के मानी है गुरेज। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, आपने सारी मेरे दिल की बातें आज मुझसे निकलवा ली।
इसीलिए तो बीच में बोली भी नहीं, चंद नुक्ते नुकात लिख के रखे थे क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे आपसे, क्योंकि मैंने आपको जब पहले दिन बात की थी तो यही था कि आपकी बात मैं सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, देखती हूँ जगह जगह।
आपकी तारीफ के तौर पर नहीं कह रही हूँ, किसी भी एक ऐसे शख्स का जो सवाल करके जवाब सुनने का की हिम्मत न रखता हो या बोलने वाले को वक्त ना देता हो। हमारे यहाँ आप टीवी देखती होंगी हमारे एंकर ज्यादा बोलते हैं, वो जो बेचारा आता है वो उनका चेहरा देखता रहता है, जी हाँ और जी नहीं से बात की गुंजाइश नहीं होती। मैं बहुत कदर करती हूँ इस बात की कि आपके नजदीक आपके सवाल आम हैं, तो उसमें कुछ अहमियत उन जवाबों की भी है जो कोई आपको देगा। मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ।
बहुत शुक्रिया। मैं तो असल में बात तो मैं आपसे कर रही हूँ, आपको पहुँचाना चाहती हूँ अपने सुनने वालों तक। अगर मैं ही बात करती रहूँ तो फिर क्या बात बनी।
और मुझे, मैं इसकी माजरत नहीं करूंगी, मुझे एक सच बोलने का मर्ज है और मुझे अभी तक कोई ऐसी वजह नहीं मिली कि आदमी सच बोलना छोड़ दे।
मुझे भी।
और जो अपने मुतालिक सच नहीं बोल सकते, फिर उसे कहीं भी सच ना नजर आता है ना ढूंढे से मिलता है। इसी तरह मैं ये समझती हूँ कि जो अपनी इज्जत नहीं कर सकता वो किसी की इज्जत नहीं कर सकता, और जो खुद खुश नहीं हो सकता वो किसी को क्या खुश करेगा।
बहुत खूब, बहुत खूब। आपसे मेरी बात अक्सर हुआ करेगी, किसी ना किसी वक्त ऐसी चीजों की हमें बात करने की जरूरत होती है। मैं ये समझती हूँ हर वक्त तो हम जिसे कहते हैं खबरें करते हैं, इधर की चीजें उधर की चीजें करते हैं, लेकिन कभी कभी अपने आप से बात करने की जरूरत होती है, अपने अंदर देखने की जरूरत होती है। और शायद कभी कोई सुन ले, किसी को अच्छा लग जाए कोई बात उसकी, कोई एक शख्स जो है वो अपने आप को इस हिसाब से सोचना शुरू कर दे, तो फिर ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती जाएगी ना एक एक करके।
यकीन
है। तो शायद कहीं पे कुछ फर्क पड़ जाएगा फिर।
ख्याल में फर्क पड़ गया तो जरूर पड़ जाएगा।
जी बिल्कुल, फिर मेरे जैसा सवाल किसी को करने की जरूरत नहीं होगी और ना ही इस दुख में जाने की कि आखिर क्या हुआ अख्तार को बुरानी को।
नहीं, इस दुख में जाने की जरूरत होना चाहिए, क्योंकि जब मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब ये एहसास हो जाए कि कहीं गलती हो गई हमसे, समझिए दुरुस्ती उसी दिन से शुरू हो जाए।
बहुत खूब। डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा मेरे साथ थी, और यकीन कीजिए डॉक्टर साहब आप इंटरव्यू सारी जिंदगी होगी मुझे यही काम करते हुए। आज मुझे इतना अच्छा लगा है आपसे बात करके, ये ऐसे ही नहीं कह रही। इट्स अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू।
आप बहुत मेहरबान हैं और बहुत फयाज भी, लेकिन आप ये देखिए कि मुझे तो खुशी इसकी है ना कि आप भी ऐसे ही सोचती हो, मैं भी ऐसा सोचती।
बहुत बहुत
तो शुक्रिया। हम सब जो लोग एक सा सोचते हैं, अगर ये दीवाने मिल बैठेंगे तो बात बहुत अच्छी हो जाएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत। सलामत रहिए, खुश रहिए, महफूज रहिए।
बहुत शुक्रिया, आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं।
बहुत शुक्रिया, अल्लाह की सो मच।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन पॉडकास्ट के साथ बहजत चलानी। पल पल बदलती दुनिया, कल से आज और तब से अब तक के सफर का अहवाल। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से पॉडकास्ट का एक नया सिलसिला, इस सफर में हमारे हमराह रहिएगा। और अब बहजत चलानी को आइंदा प्रोग्राम तक इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा।